प्रश्न अपने आप आ जाएगा, क्या कुछ करता है
राधा राधा कहेगी तो कृष्ण आ जाएंगे, तो कृष्ण से क्या मतलब है तुम लोगों का, है कोई मतलब? जैसे पत्नी को अपने पति से प्यार होता है तो तुम लोगों को कृष्ण से ऐसे कोई जरूरत है, तो इसलिए कृष्ण को बुला रहे, इस चीज को समझो। कृष्ण अभी तुम लोग जो कीर्तन कर रही थी, ये कृष्ण शरीर है तो राधा जी प्राण है, ऐसे ही समझो। गोवर्धन धारण हुआ ये राधा जी ने उठाया कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण शक्तिमान है, राधा जी शक्ति हैं, शक्ति के बिना कोई काम नहीं होता। हमको जरूर है राधा कृष्ण जुगल की सेवा, कृष्ण की सेवा अकेले नहीं, तब उसमें कुछ भोग की लालसा है, बदमाशी की नियत है, ऐसा समझो। यदि केवल कृष्ण को कोई चाहता है, केवल कृष्ण को चाहने वाले लोग असुर कहलाते हैं। रावण सीता जी को हर ले गया, वो कृष्ण को, राम को मारना चाहता था और सीता जी को अपने घर में रखना चाहता था, इसलिए रामचंद्र जी ने कहा कि हमारी शक्ति का तुम अपनी पत्नी बनाएगा, उसे वंश के साथ में ध्वंस कर दिया। और कंस ने क्या किया? कंस कृष्ण को कुछ नहीं, राधा जी को कुछ नहीं बोला, कृष्ण को मारने के लिए चेष्टा की। जो कोई शक्ति को मानता है वो भी असुर है, और जो केवल शक्तिमान को मानता है, कृष्ण को मानता है, राधा जी को नहीं मानता है, वो भी असुर है। इसलिए राधा कृष्ण की जुगल की सेवा होनी चाहिए। यदि राधा कृष्ण की सेवा हो जाएगी, यदि कोई कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, तो उसको दुर्गा जी की पूजा की क्या जरूरत है? यदि किसी को 1 करोड़ रुपया मिल गया तो उसे फूटे हुए पैसे की कौड़ी की कोई जरूरत है? समझो चीज को। जितने देवता देवी हैं उनका भजन करने से 1 फूटी हुई कौड़ी मिल दीजिए, और राधा जी का भजन करने से और कृष्ण का भजन करने से और किसी को भी पूजा करने की जरूरत नहीं, उनको प्रणाम करो, आदर करो, इष्ट देव राधा कृष्ण रहें, तब तो ये कीर्तन इत्यादि एकादशी सब ठीक हो जाएगा। अन्यथा राधा कृष्ण का भी भजन करते हैं, देवता देवी असंख्य लोगों की पूजा करते हैं, राधा कृष्ण पर विश्वास नहीं है, क्योंकि कीर्तन के समय कीर्तन कर लेते हैं तो नहीं होगा, इसलिए राधा कृष्ण में एकांतिक भजन उनका, उनका नाम हो और लोगों के प्रति आदर हो, इष्ट देव हमारे राधा कृष्ण रहेंगे। तो अभी जन्माष्टमी गई है, इनकी बधाई हुई, हजारों लोग यहाँ पर आए, बधाई के संस्कार प्रसाद पाया, हजारों आदमी जिसकी गिनती नहीं। अब राधा जी की का जन्म तिथि आ रही है, आप लोग राधा जी के जन्म तिथि में आएंगे, बधाई गाएंगी, और यहाँ पर जब किंचित जो कुछ प्रसाद होगा आप लोग लेंगे। शहर के भीतर से चाव आता है, लड़कियाँ तरह तरह से सज धज करके आती हैं, चाव लेकर के, उनके आभूषण, उनकी माला, उनके कपड़े इत्यादि तरह तरह के चीज़ों को लेकर के कीर्तन के साथ में, और सब लोग यहाँ आते हैं, और उनका अभिषेक राधा जी का होता है, कृष्ण का अभिषेक होता है, आप लोग उसमें सम्मिलित होंगे। और एकांतिक रूप से राधा कृष्ण का भजन कीजिए। एकादशी जरूर होना चाहिए, एकादशी के बिना और सब जितने उपवास व्रत हैं सब बेकार हैं। एकादशी एक यदि एकादशी करे तो जन्म मरण से उसे अतीत करा देता है। इन चीजों को समझ करके और एकादशी अभी यहाँ किया, कीर्तन हुआ और यहाँ सीढ़ी से उतरते ही परस्पर लड़ने झगड़ने लग गई, ऐसा मत करेंगे। या घर में जा करके लड़ाई झगड़ा इत्यादि सब जीवन भर के लिए जंजाल को दूर कर देना बहुत सहज, नहीं तो ऐसा नहीं जो यहाँ से निकली उतरी और घर में गई और लड़ाई हो गई, सास और बहू की लड़ाई हो गई, या लड़की से और ननद से और बहू से झगड़ा हो गया, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसको सुधार करके भगवान का भजन करो। बहू को भी अपनी बेटी समझो और बहू भी सास को अपनी मैया समझे, तब तो ये सब ठीक है। और नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, भगवत भजन नहीं होगा। और एकांतिक रूप में राधा कृष्ण का भजन करो। ये ब्रज कृष्ण का है, यहाँ पर शंकर जी चौकी देते हैं, पहरा देते हैं, दुर्गा जी इसकी रखवाली करती हैं, धाम की पहरा पहरेदार बन करके मुक्ति यहाँ पर जेवर बटती है, जेवर समझती है रस्सी बटती है। सब देवता लोग ब्रह्मा शंकर गणेश यहाँ की धूली को अपने सिर पर धारण करते हैं, यह राधा कृष्ण की चरण धूली है। आप लोगों का परम सौभाग्य इस मथुरापुरी में ब्रजपुरी में आप लोगों का जन्म हो या शादी हो करके आप लोग आई, इसलिए क्रमशः इन चीजों को ठीक रहेंगी, सबके प्रति आदर का भाव रहेगा तो जीवन में भी सुखी रहेंगी, परलोक में भी सुखी रह सकती है। अब हम लोग अपना भागवत चाय यहाँ पर राम रम करते हैं। आप लोगों को जो जाना है तो जाएंगे, जो रहना चाहते हैं वो लोग रहेंगे। कृष्णदास कीर्तन करो।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च सार्थिभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तिते। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो नमः। यं प्राव्रजन्तमनुते तमसेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जिहाय, पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना, इति विज्ञाय राधे तं माम शरणं।
हम लोग जन्माष्टमी से लेकर अब तक कृष्ण तत्व के संबंध में बतला रहे हैं। विभिन्न वक्ता लोग इसके संबंध में अपनी अपनी अपने अपने भावों को कृष्ण के चरणों में अर्पित किया। हमने कल ही आपका कुछ शंकाओं को कृष्ण लीला के संबंध में, जो लोग साधारण लोग शंकाएं उठाते हैं उसके संबंध में मैं कुछ बतला रहा हूं। बहुत भक्त लोग तो ऐसे हैं, जैसा भागवत में उनका चरित्र वर्णन किया गया है, निर्विवाद रूप में बिना तर्क युक्ति के उसको मान लेते हैं। किंतु आधुनिक शिक्षित व्यक्ति विशेषकर के अंग्रेजी इत्यादि पढ़ने वाले, विशेषकर के क्रिश्चियन मिशनरी वाले पादरी इत्यादि, उनका जिन्होंने स्थान किया है अंग्रेजी स्कूलों में जो पढ़े हैं, वो बस तरह तरह की शंकाएं उठाते हैं कृष्ण के लीला के संबंध में। वो शंकाएं हमने सब उस दिन व्यक्त की थी, उसी के संबंध में दो चार बातें मैं आज बतला रहा हूं। वैष्णव लोगों को, विशेष करके प्रचारक लोगों को इन सब चीजों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है। पहली बात यह कि कृष्ण ने बचपन में जन्म लेते ही एक स्त्री का वध किया और बहुत झूठ बोलते थे बचपन से ही, दूसरों के घरों में चोरी करते थे, बड़े हो गए तो गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, दूसरों की स्त्रियों के साथ में रात में एकांत में रात किया, छल कपट करके धर्म के का उल्लंघन किया, जैसे जयद्रथ के वध में मैंने बतलाया, उनके वध के समय में उन्होंने छल किया और धर्म का उल्लंघन किया। दुर्योधन के साथ में भीम के युद्ध में और जरासंध के साथ में भीम के युद्ध में उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया और धर्म का उल्लंघन कर उनको ऐसा कहा कि आप इन्हें धर्म के युद्ध के विपरीत आप इन्हें मारिए। भीम ने भी वैसा किया। तो ऐसी ऐसी शंकाएं करते हैं। वो कहते हैं महाभारत में जो युद्ध करने वाले कृष्ण थे उनको तो हम मानते हैं, किंतु भागवत में वर्णित जो कृष्ण का चरित्र है हम उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बहुत गंदा चरित्र है। संतों का कहना यह है कि जिनका चरित्र अपवित्र होता है, बहुत कम भरा होता है, वैसे लोग वैसा ही जगत को देखते हैं। सबसे पहली बात, कृष्ण ने पांडवों की और कौरवों की भरी सभा में महाराज धृतराष्ट्र अंधे के सामने, पांचों पांडव वहां हैं जहां पर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे लोग हैं, और भरी सभा में रजसा अवस्था में दुशासन उसको पकड़ करके केस पकड़ लाया, घसीटता हुआ आया, लात से मारा और उसे नंगी करके दुर्योधन की गोदी में बैठाना चाहा। जब उसका चीर हरण किया जा रहा था सब लोग निर्वात देख रहे थे, सब लोगों ने सिर नीचा झुका दिया, किंतु किसी की हिम्मत नहीं जो कोई कहे। भीम गदा लेकर के उठे, युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा जिसे जरासंध जाओ, देखो तो ये कृष्ण कुछ करते हैं कि नहीं अपने भक्तों के लिए। अर्जुन से अर्जुन को भी बंद कर दिया। भीष्म पितामह न जाने क्यों मौन साध लिए, चीज नहीं क्या सदैव थे। गुरु द्रोणाचार्य भी धर्म के ज्ञाता होकर के उन्होंने उस समय कोई सहायक नहीं रहा। अब तीर खींचा और नंगी हुई और सभी लोग देख रहे थे अभी एक सेकंड की बात है नंगी हो जाएंगे। जितने असुर श्रेणी के वहां पर दुर्योधन कर्ण दुशासन शकुनी थे, बाबा दुशासन को और बढ़ावा दे रहे थे और उस द्रौपदी की लज्जा करने दूर कर लज्जा दूर हो जाए, कृष्ण जी स्वयं चीर बन करके आए और ऐसा चीर बढ़ाया दुशासन जैसा महाबली 7,000 हाथियों का बल वाला और वो थक गया और चीर समाप्त नहीं हुआ। और ऐसे कृष्ण स्वयं 5 वर्ष की 6 वर्ष की उम्र गोपियों का चीर हरण करेंगे। अब वहां पर इस चीज को लाओ, इस समय कृष्ण की उम्र करीब करीब 70-100 वर्ष की होगी, जिस समय द्रौपदी का चीर की रक्षा की, उसको लंबा किया, उसके रज्जा को रखा और कृष्ण है 7-5-6 वर्ष के और गोपियां हैं 4-5 वर्ष की 6 वर्ष की सुकुमारी। यहां पर जैसे पूजा यहाँ ब्रह्मेश्वर में पूजा करने के लिए जाती हैं, हमको अच्छा पति मिले, वो भी जानते भी नहीं कि पति किसको कहते हैं, और लोटे में पानी लेकर के सवेरे स्नान करके जाती हैं, वो 4-5 वर्ष की लड़कियां हैं और उनका कृष्ण चीर हरण करेंगे। ये तो कामुक व्यक्ति जिनको धर्म का ज्ञान नहीं वो लोग कृष्ण पर ऐसा आक्षेप करते हैं। जिनकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखा। एक कामी व्यक्ति जगत को कामी व्यक्ति देखा, एक चोर सब जगत को चोर समझता है, एक साधु सबको साधु समझता है। तो ऐसे गंदे विचार के लोग जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, भजन का ज्ञान नहीं है, भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है, जिस कृष्ण ने 16,000 जेल में पड़ी हुई कराती हुई कष्ट से नरकासुर के जेल में भरी पड़ी हैं, उनके साथ में अत्याचार अनाचार करता है, और कृष्ण क्षण मात्र में यह जान करके गरुड़ पर पधारे और नरकासुर का विनाश करके दरवाजा तोड़ दिया जेल का और सबको निकाल लिया और कहा कि तुम कहाँ के रहने वाली है, अपना नाम पता बतलाओ, तुमको घर में भेज दें। उन्होंने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे घर में, हमको कोई नहीं रोक रखेगा, न हमारे पिता रखेंगे, न भाई रखेंगे, न भाजी रखेगी, न मैया रखेगी, हमको तो जबरदस्ती वहाँ से ले आया है और इसके जेल में न जाने कब से हम पड़ी हुई हैं, अब हमको कौन, हमारे पति भी नहीं रखेंगे, बाप भी नहीं रखेगा, कोई भी नहीं। ऐसे भाग की कुछ ये सब जो चीजें हैं ये गलत हैं, हम लोग इसको नहीं मानते। जब किसी स्त्री को कोई जबरदस्ती छू दिया तो स्त्री अपवित्र हो गई, उसका दिल अपवित्र है, घर में रहते हुए भी तो वो अपवित्र है, और सीता जी को रावण छू लिया तो बस वो अपवित्र हो गई। हम राम के इस चीज को नहीं मानते, ये तो शिक्षा देने के लिए राम ने ऐसा किया लोगों को। ऐसे ही उन लोगों को उन्होंने कहा अब तो हम आपके घरों में झाड़ू देंगी, बर्तन मजेंगी, आपका जूठा कुछ खा लेंगी, अब कहीं नहीं जाएंगे, हमें कोई जगत वाले हमारे प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं देंगे। आपकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, कुछ बदली नहीं, बहुत थोड़ी सी बदली है। जहां सुनते हैं अत्याचार इधर उधर स्त्रियों पर विशेष करके होते हैं, उनकी कोई बातें नहीं सुनता, तो इसलिए कृष्ण ने उनको क्या किया, नौकरानी नहीं तुमको पाटरानी बनाएंगे, और उनको अपनी पाटरानी बनाया सबको, उनके लिए अलग अलग मान दिए और उनको स्त्रियोचित पत्नी की भांति सबको सम्मान दिया। ये दया कृष्ण की है ना कि भोगी लोगों की लक्षण है। यदि ऐसी ही बात होती तो रास में लाखों गोपियां सब आई हैं, श्रृंगार करके आई हैं, एकांत में मिली, कृष्ण क्यों अंतर्धान हो गए? यदि वो कामी पुरुष होते तो ऐसा होता, उन गोपियों का जिसका चीरहरण किया है, 5 वर्ष की अवस्था में उनको बच्चा पैदा हुआ न क्या हुआ? उन मूर्खों से पूछिए जो तुम्हारी बहन नंगी रहती है और तुम्हारा भाई उसके साथ में नंगा खेलता है तो इसका मतलब जैसे वो खराब हो गया? अरे हमारे समय में 10 वर्ष की उम्र में बच्चों को कपड़ा नहीं पहनाया जाता था, 9-10 वर्ष तक नंगे ऐसे ही लड़कियां भी डोल रही हैं, वो भी डोल रहे हैं। आजकल संसार कामुक हो गया है, इसलिए अभी आज जो लड़की पैदा है उसको भी वो क्या पहना देते हैं ना, पैंट या क्या क्या पहना देते हैं, उनका दिल कल्पित है। इसलिए भारतीय संस्कृति नहीं, ये लोग अंधे हैं जो लोग ऐसा कृष्ण पर आक्षेप कर रहे हैं। कोटि कोटि गोपियां उसमें कृष्ण निर्विकार रहे, 16,000 गोपियां रानियां कृष्ण को वशीभूत नहीं कर सकी। ऐसे ये कृष्ण स्वयं भगवान हैं, राधा जी स्त्री नहीं है, उनकी शक्ति है, पराशक्ति है, स्वरूप शक्ति है, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए कृष्ण पर लालसा लगाते हैं वो जिनका चित्त कलुषित है, जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे मूर्ख लोग जो आजकल शरीर को ही आत्मा समझ बैठे हैं, ऐसे लोग करते हैं। इसलिए भागवत अपने अर्थ में ठीक है। एक चीज देखिए, कृष्ण कितने बड़े दयालु हैं। कृष्ण का कोई अपमान करता है, उनको गाली गलौज करता है, कुछ नहीं कहते, उनको भक्ति सुगति दे देते हैं। किंतु भक्तों का यदि कोई अपमान करता है तो वो नहीं सह सकते। यदि वैष्णव का कोई अपमान करे, उनके भक्तों का अपमान करे, तो अपना भी कोई रहे सदा संगमंदी भी उसका भी सिर अलग कर देते हैं। ये पूतना ब्रज में आई, उतने को माता की गति दी क्यों? वो कृष्ण का विनाश करने के लिए आई, और सब समय कृष्ण की चिंता भावना करते 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 माता का जैसा रूप बना करके आई और अपना स्तन दिया, चाहे भले ही बीस हो चाहे जहर हो, स्तन देने के साथ में कृष्ण हो तू मेरी मैया बन करके आई है, अच्छा तो तुमको जथाते ही मैया बना दे। ये कृष्ण का विचार। भक्तों का किंतु अपराध करे कोई भी उसको सहन नहीं कर सकते। जैसे दुर्वासा जैसे महाजोगी भगवान को भी मान रहे हैं, सब कुछ करते हैं, महाजोगी जिसको जो कहते हैं हो जाए, किंतु महाराज अम्बरीश के प्रति अन्याय किया। आओ तुम ढोंगी है क्यों ये कहा, ढोंग दिखलाते हो, बस एकाची कर लिया सब कुछ हो गया। वो एक पैर पर खड़े रहे, कुछ उत्तर नहीं दिया, भगवान उसको सहन नहीं कर सके और अंत में उनको भगवान के पास भी गए, शंकर के पास में, ब्रह्मा के पास में, उनको नहीं छोड़ा, ये जाओ अम्बरीश के पास में जाओ, वो यदि क्षमा करेंगे तो मैं क्षमा करूंगा तो नहीं, किंतु कृष्ण के चरण में कोई अपराध करे तो कृष्ण उसको क्षमा कर देंगे, इस चीज को समझो। इसलिए वैष्णवों को लिए भी मैं कह रहा हूं, कृष्ण को भले ही गाली दे दो, उनका भजन करो कोई बात नहीं, किंतु वैष्णव लोगों को जो उनका नाम आश्रय करके हैं, भगवान का भजन करते हैं थोड़ा भी, तो उनसे ऐसे डरो जैसे जम से डरते हो, उससे भी अधिक। उनको भगवान नहीं छोड़ सकते। कृष्ण को 10 गाली दे दो, 50 गाली दे दो, अवज्ञा कर दो, कोई भी बात नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्षमा कर देंगे। किंतु यदि वैष्णवों का भले कनिष्ठ अधिकारी हो, कोई भी हो, यदि वैष्णव के चरणों में अपराध करता है, उसे कभी भी क्षमा नहीं कर सकते, कभी भी ऐसा कहीं दिखता है। देखो दुर्योधन को दुशासन को क्यों मारा, दोनों तो भाई ही हैं, तो पांडव लोग कौरव लोग, इसलिए द्रौपदी का अपमान किया दुशासन और कंस इसने दुर्योधन। भगवान के लिए कुछ नहीं कहा, भगवान के लिए कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा, कोई भी भागवत में, रामायण में, पुराण में नहीं आता। अर्जुन के लिए अपशब्द कहे, द्रौपदी के लिए कहा, उनको लाश के घर में जलाने की चेष्टा की, भीम को 20 के लड्डू दिया भक्तों को, और द्रौपदी पर अत्याचार किया। कृष्ण इस चीज को भूल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, छल से, बल से, कौशल से तुम्हें हम दुरुस्त करेंगे, फलदामा तुम भक्तों से तुम लड़ता है, उसे झगड़ता, अपमान करता है, इसलिए क्या किया, जैसे किसी को चीर देते हैं ऐसे भीम के द्वारा जरासंध को दो भागों में चिरवा दिया। और दुर्योधन को क्या किया, और तुम्हें इस पर बैठाएगा, नंगी द्रौपदी को तू बैठाएगा, हमारी प्रिया को बैठाएगा, हमारे प्रिय भक्तों को बैठाएगा, अच्छा तो देखो तुम्हारा जान ही तोड़वा देते हैं, जान तोड़वा करके फोड़वा दिया भीम से। दुशासन का भी ऐसा ही किया, उनके लिए क्षमा नहीं है, इसलिए कृष्ण को दो चार अपशब्द कर दो, भजन मत करो कोई बात नहीं। यदि भक्तों का अपमान नहीं किया, वही कृष्ण क्या निंदती, हंती, द्वेष्टि, वैष्णवानां न अभिनंदति, क्रुद्धते जातिनो हर्षं पतन्तामि, भगवान की दृष्टि में वो पतित हो जाता है, गिर जाता है कौन, यदि वैष्णवों का सम्मान नहीं किया, आ रहे हैं तो उनका आगमन स्वागत नहीं किया, जब आए तो उचित उठ करके खड़े होकर के अभिवादन नहीं किया, उनके आते समय में प्रसन्नता नहीं, आइए पधारिए, बड़ी आनंद की बात है, आज हमारा जीवन सार्थक हो गया, आज भगवान हमारे ऊपर में प्रसन्न है, इसलिए आप पधारे। और जब जा रहे हैं तो उनको उठ करके अंततः 10 पैर या सीमा तक उनको पहुंचा करके आओ, घर में आदर करो, उनके साथ में द्वेष मत कभी भूल करके भी मत करना, उनके स्वरूप को नहीं जानते हो, तुम सोचते जो वैसे ही द्वेष करता है, ये भी वैष्णव मात्र द्वेष नहीं करता, इसलिए उनके प्रति द्वेष न करे, हिंसा न करे, उन्हें मारे नहीं, उन्हें गाली न दे, अपमान मत करे, और नहीं तो कृष्ण उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण की नजरों में वो पतित हो जाते हैं और कृष्ण उसका फल उसे चखाते हैं। भक्ति तो देंगे ही नहीं, नरक में डुबाएंगे, इसलिए वो भजन सारा ही चौपट हो जाए। जरासंध शंकर की बहुत आराधना करता था, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण ये बहुत उपासना करते थे, बहुत बड़े भारी दानी थे, धार्मिक थे। धर्म किस काम का यदि भक्तों का आदर नहीं हुआ, इस चीज को समझे। सारे जीवन में कृष्ण ने अपने चरित्र में इस चीज का पालन किया, भक्तों की रक्षा के लिए उनका आविर्भाव हुआ है। वो भक्तों का अपमान, भक्तों का ये सब चीज नहीं सह सकते हैं। इसलिए जरासंध ने क्या किया, जरासंध ने उसने कंस को अपनी बेटी से विवाह कर दिया, दोनों दोनों बेटियों का, और उसे कहा जैसे वसुदेव को कैद कर लो और देवकी को। और जब कंस ने ऐसा किया तो वाहवाही दी, ठीक है ऐसा ही करो, मैं तुम्हारे ऊपर में हूं। जरासंध ने ऐसा किया, इसलिए उसका फल भोगना पड़ा। भक्तों के देवकी और वसुदेव की चरण में अपराध किया और असुरों का साथ दिया और पांडवों के विरुद्ध में शिशुपाल के विवाह के समय में, मैंने रुक्मिणी जी के शादी के समय में उन असुरों का साथ दिया, पांडवों का विरोध किया। जिन जिन लोगों ने पांडवों का विरोध किया, भक्तों का विरोध किया, उस सब का कृष्ण ने ध्वंस कराया। आज जिन लोगों ने कृष्ण के चरण में थोड़ी सी गलती भी की किंतु भक्तों का आदर किया, उनको उन्होंने आदर पूर्वक सुगति दे दी। यहां तक कि जिनको मारा और वहां पर कृष्ण वहां खड़े हैं, पांडवों ने भी मारा, किसी ने भी मारा, उसको सुगति दे दी। इसलिए उन लोगों ने पांडवों का हित नहीं किया, युद्ध में लड़ रहे हैं वो दूसरी बात है, उनकी अवज्ञा नहीं की, निंदा नहीं की, इसलिए भूल करके भी वैष्णव निंदा इत्यादि मत करो। इसलिए कृष्ण के चरण में अपराध हो जाए, नाम के चरण में अपराध हो जाए, नाम क्षमा कर देंगे, किंतु वैष्णव के चरण में अपराध हो गया वो कृष्ण क्षमा नहीं करते। इनके चरित्र का एक वैशिष्ट्य है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि वेदों में कृष्ण का नाम नहीं है। अरे मूर्खो, तुमने वेद पढ़ा, वेद में कहा नहीं उनका नाम, सर्वत्र ही उनके नाम है। कृष्ण का एक नाम विष्णु है, ओम तद विष्णु सदा प्रसन्न सूर्य देवी चक्षुरागतम। वासुदेव उनका नाम है, क्योंकि वासुदेव के पुत्र के रूप में वासुदेवाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। वो साक्षात विष्णु है, वासुदेव के नाम में उनका रूप है। श्यामम श्यामात सबलम प्रपद्ये, श्यामात सबलम प्रपद्ये। गोपाल तापनी उपनिषद में वेदों का ही अंग है, उसमें सर्वत्र राधा कृष्ण का नाम वर्णन है। इसलिए मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों में उनका नाम नहीं। ऐसे मूर्खों का एक दल मथुरा में भी है जो कहता है ये सबको नहीं मानता, भगवान की मूर्ति नहीं मानते, कृष्ण को कहते हैं कृष्ण का मूर्ति, ये उनकी मूर्ति नहीं, उनकी आत्मा भगवान थी, वो ऊपर से भगवान नहीं थे। कृष्ण कहते हैं ऐसे व्यक्ति नराधम मूढ़ है, ऐसे लोगों का मैं ध्वंस करता हूं, और ऐसा ही करते हैं। इसलिए भगवान का कितना सुंदर रूप है, मेघ श्यामल मधुर मुरली उनके मंद मुस्कान होठों पर खेलती है, और ऐसे वो कहते हैं कि वह निराकार है। इसीलिए यह कृष्ण का पक्षपात नहीं, बल्कि असुरों का जो उन्होंने हत्याएं की, उनका जो दमन किया, उनके कल्याण के लिए भी अधिक पाप न करें। इसीलिए हम देखते हैं कि कृष्ण का चरित्र सब प्रकार से निष्कलंक है। और भी मैंने जो शंकाएं की थी, जयद्रथ के वध का समय, जिस समय में सात महारथी मिलकर अकेले अभिमन्यु को घेर कर और उसे मार रहे थे सात तरफ से, अरे कोई वीर है तो अकेले अकेले लड़ ले, सात एक छोटे से 15 वर्ष के बच्चे के ऊपर में, बड़े बड़े महारथी कौन, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन, जयद्रथ ऐसे ऐसे महारथी लड़ गए और अन्याय रूप से धनुष लाया तो धनुष को काट दिया, रथ को काट दिए, साथी को मार डाला, गदा लेते हैं गदा को भी काट दिया, एक साथ में सातों मिलकर भीम को प्रवेश नहीं वहां पर करने दिए। और उस समय में उन लोगों ने अकेले उस बच्चे को मारा। जब वो लौट करके आए भीम अर्जुन, सुना जी हमारे बेटे को उन्होंने मार डाला और जयद्रथ ऐसा दुष्ट कि भीम इत्यादि किसी को पास में नहीं आने दिया और बेईमानी के साथ उसे मारा है अन्याय रूप से।